శ్రీ శ్రీ గోడితాయికి, శ్రీ శ్రీ రాధారాజు లలిత విశాఖకి, శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమాన్కి, ఇస్కాన్ జూ యాత్రకి, ఆల్ గ్లోరీ టు ది సమన్వయ సమృతని ఆజ్ఞకి, ఆల్ గ్లోరీ శ్రీ గురు శ్రీ గురు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమస్కార ధారవాధ్యాయ శ్లోక 51. ఏవం వర్ష సహస్రాణి మనా సస్య మనా సుఖం విదాధనం అపి నతర్ప్య సర్వం భౌమా కాద్ ఇంద్రియే ఏవాంశ సహస్రాణి మనస్థిర్మనా సుఖం రాధనోపి నతర్ప్య సర్వభౌమ కదింద్రియ ఏవాంశ సహస్రాణి మనస్థిర్మనా సుఖం దాదనపి నతర్ప్య సర్వభౌమ కదింద్రియ.
మాతాజీస్
హిందీ యా ఇంగ్లీష్?
एवं इस तरह से वर्ष सहस्त्राणि 1000 वर्षों तक मनः षष्ठे 5 ज्ञानेन्द्रियों तथा मन के द्वारा मनः सुखम मन द्वारा उत्पन्न क्षणिक सुख विदधानः संपन्न करते हुए अपि यद्यपि न अतृप्त संतुष्ट नहीं हुए सार्वभौम सारे जगत का राजा होकर भी गत इंद्रिय है अशुद्ध इंद्रियों के कारण. अनुवाद तथा तात्पर्य, यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा पांच इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। तात्पर्य, कद इंद्रिय अर्थात अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है? यदि इंद्रियों और मन को कृष्ण भावना अमृत में लगाया जाए, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम, मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक वह अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है तब तक उसकी इंद्रियां अशुद्ध रहती हैं, किंतु जिस क्षण से उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है और वह अपने को भगवान के दास के रूप में पहचानता है तो उसकी इंद्रियां तुरंत शुद्ध हो जाती हैं। शुद्ध की हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कोई भले ही हजारों वर्षों तक इंद्रियों का भोग क्यों न करे, जब तक वह इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। अनुवाद दोहराइए। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा पांच इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके।
सही नहीं बोले? Everyone understand Hindi here? Hindi, right. Om Agyata Mirandasya Jnananjana Shalakya Shri Chaitanya Manovrasam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हम किस प्रकार भगवान के शरणागत हो सके, और अगर हम यह शिक्षा का लाभ उठाएं बिना शंका के हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुनाई दे रहा है पीछे? हाँ, जोर से बोलें। और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप पिछले कई हफ्तों से महाराज ययाति की कथा सुन रहे हो और सुनते जाओगे एक अध्याय और। तो महाराज ययाति राजा थे और इंद्रिय तृप्ति में उनकी रुचि थी। हम सब सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये है भौतिक आकर्षण। भगवद गीता के 30 अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, क्या कारण है कि हम इच्छा के विरोध में आकर गलत काम कर देते हैं? हम जानते हैं ये ठीक है, अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, और जानते हुए भी ये कार्य प्रतिकूल है हम उसमें जुड़ जाते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। भगवद गीता में प्रश्न और उत्तर आप पढ़ते हो। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी आप प्रश्न और उत्तर सुनते हो। तो अर्जुन ने परम भगवान से पूछा, तो भगवान ने इसके उत्तर में क्या कहा, काम ऐसे क्रोध ऐसे राजगुण समुद्भवा, काम के प्रभाव के कारण हम जानते हुए भी विचलित हो जाते हैं। हम जानते हैं ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तभी हम विचलित हो जाते हैं। अर्जुन ने एक रूप से वो प्रश्न पूछा जो आप और हम पूछते हैं, और भगवान ने कहा कि काम के प्रभाव के कारण वह व्यक्ति विचलित होकर गलत काम कर जाता है। फिर आगे भगवान ने कहा, ये जो शत्रु है आध्यात्मिक जीवन का, इसको शत्रु कहा गया है। ये जो आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है, इसका निवास का स्थान कहाँ है? मान लो आप कोई उग्रवादी को ढूंढ रहे हो, आपको ये पता लग जाए, ये सूचना मिल जाए उग्रवादी जू में है, उसे काम नहीं चलेगा। आपको ये पता लगाना है जू में कहाँ, कौन से कोठी में, कौन से कोने में, हरे कृष्ण लैंड में है। तो आप पता लगाओगे तो ही पकड़ पाओगे। तो इसी प्रकार सबसे पहले भगवान ने उत्तर में कहा कि शत्रु कौन है। फिर आगे वो कहते हैं कि शत्रु को आप कहाँ ढूंढ सकते हो, कहाँ प्राप्त कर सकते हो, ये शत्रु कहाँ छुपा हुआ है, ये शत्रु का निवास का स्थान क्या है। क्या है निवास का स्थान? मन, बुद्धि और इंद्रियों में। इन मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से ये द्वार है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा काम का प्रभाव पड़ता है। मन में हम सोचते रहते हैं शास्त्र के विपरीत कार्य को। इंद्रियां, हमारी अनेक इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम ये सोचते हैं भौतिक सुख सुविधा, मन के द्वारा सोचते हैं, जीभ के द्वारा चस्का खाना चाहते हैं कुछ भी चीज, और इस प्रकार अनेक इंद्रियों के द्वारा। तो अभी भगवान ने ये पहचान तो दे दी कि शत्रु कहाँ है और किस स्थान में प्राप्त होता है, किसके द्वारा, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। फिर इसके आगे भगवान कहते हैं ये शत्रु का वध कैसे कर सकते हो। पहले शास्त्रों में आपकी समस्या की चर्चा की जाती है, फिर इसके पश्चात ये समस्या हल कैसे हो सकती है। भौतिक समाज में कई बार आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर से पूछते हो बीमारी है, डॉक्टर साहब कहते ये है बीमारी, आप पूछते हो क्या है इलाज, डॉक्टर क्या कहते हैं, सॉरी नो इलाज, पर इसका कोई इलाज नहीं। पर शास्त्रों में समस्या की चर्चा और उसके पश्चात समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, तो भगवान आगे कहते हैं ये समस्या का हल कैसे होगा, और इस विषय में क्या कहते हैं, ज्ञान के तलवार से, ज्ञान के तलवार से इसका विरोध करो। दूसरे शब्दों में ज्ञान के सहयोग से ये जो भौतिक आकर्षण जो हमें विचलित कर देता है उसे हम बच सकते हैं ज्ञान के सहयोग से, और ये उत्तम ज्ञान हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जो श्रीमद् भगवत का ज्ञान है, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। निगामा कल्वा ग्रोर गलितम फलम, ये पकावा फल आ रहा है गुरु परंपरा के द्वारा, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ये फल यथारूप प्राप्त हो रहा है. तो ये ज्ञान के तलवार से तो समाज में अनेक प्रकार के ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान. भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर क्या है? भौतिक ज्ञान के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं कि भौतिक ध्येय को अधिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, और हम इस विश्वास से चलते हैं कि भौतिक कार्यों के द्वारा आप भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हो और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो. तो भौतिक ज्ञान का संबंध है भौतिक ध्येय के द्वारा और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में किस तरह आप जुड़ सकते हो. आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य है कि अब ये समझो कि अब हो कौन, ये समझो कि जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है. ये है आध्यात्मिक ज्ञान. और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज अधूरा है. जैसे हम कल दोपहर को समझा रहे थे लेक्चर में, इस समय भारत देश में यहाँ पानी की बड़ी कमी है और कई सालों में. इसका मूल कारण क्या है? आज प्रकृति द्वारा अगर आप कष्ट भुगत रहे हो, माया दक्षिणा प्रकृति स्वीते सचराचर, ये प्रकृति भगवान के निर्देशन में है, भगवान से स्वतंत्र नहीं. भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरे आदेश से चलती है. तो इसका कारण क्या है? समाज में यज्ञ जो कि आवश्यक है उसका पालन नहीं हो रहा. और जब समाज में यज्ञ समाप्त हो जाता है या घट जाता है, जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, तो फिर आप ये अनुभव करोगे जो आज अनुभव हो रही है. और भविष्य में यह भविष्यवाणी है कि समाज की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी. अगर आज आपको गर्मी लग रही है, थोड़े महीने ठहर और अगले साल देखना, इसे भी अधिक गर्मी होगी. तो ये है शास्त्रों का निर्णय. तो भगवान कहते हैं ज्ञान के तलवार से इस अज्ञानता को दूर करो. उसका अर्थ है ज्ञान जो कि शास्त्र में प्राप्त होता है. व्यासदेव ने वैदिक शास्त्रों की रचना की, सार को प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में. जब भी उन्हें लग रहा था कि मेरी रचना में कुछ कमी रह गई है, और जब वो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है, क्योंकि तो गुरु नारद मुनि ने क्या कहा, तुमने केवल शुद्ध भक्ति पर फल नहीं दिया. जिसके पश्चात उन्होंने हमें ये प्रसिद्ध भगवत का उपदेश दिया. तो भगवत में आप देखते हो कि हर समस्या का हल है. उदाहरण के लिए एक समस्या ये है कि हम सब काम वासना की तरफ खींचे जाते हैं. तो काम वासना की तरफ खींचे जाते हैं और देखा जाए ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए. हम भ्रम में रहते हैं कि हम इंद्रियों को तृप्त कर सकेंगे. तो इस भाव का विरोध करने के लिए आप ये महाराज ययाति की कथा पढ़ते हो. महाराज ययाति राजा थे, उनका आकर्षण हो गया था. शुक्राचार्य की बेटी उनकी पत्नी थी देवयानी, और वो उनके साथ एक नौकरानी भी थी. प्राचीन समय में जब रानियों की शादी होती थी, उनके साथ हजारों दासियां भी आती थी. तो वहाँ यह आती कि बहुत गहरी रुचि थी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में, और इसका उनका संबंध पत्नी के साथ होता तो उनकी नौकरानी के साथ भी हो गया। जब शुक्राचार्य जो कि उनके ससुर थे उन्हें पता लगा कि ययाति का संबंध हुआ था मेरे बेटी की नौकरानी पर, तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया। शुक्राचार्य के पास अनेक योगिक सिद्धियां थी, उन्होंने श्राप दिया तुम बुरे व्यक्ति बन जाओ, क्योंकि बुरे व्यक्ति की इंद्रियां कमजोर होती हैं और इंद्रिया तृप्ति की सुविधा भी कम होती है। तो उन्हें कहा तुम बुरा व्यक्ति का ध्येय प्राप्त कर लोगे। ये था किसका श्राप? शुक्राचार्य का। पर साथ में उन्हें ये भी पता था अगर श्राप लागू होगा ययाति पर तो इसके कारण उनकी बेटी को भी कष्ट आएगा। उन्हें साथ में एक वर भी दे दिया, पर अगर कोई जवान व्यक्ति अपने जवानी को तुम्हारे बुढ़ापापन से बदलने को तैयार है तो तुम फिर से जवान बन जाओगे। आजकल किसी का योगिक सिद्धि नहीं है कि आपको एक मिनट श्राप मिले बूढ़े बन जाओ, तो साथ में ये सुविधा है जवान बनने की। आजकल के कलयुग में ये शक्ति नहीं है। प्राचीन समय में शुक्राचार्य जैसे जो योगी थे उनके पास ये सुविधा थी। ये कल्पना नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सच्चाई है। श्रीमद् भगवतम का हर शब्द 100% सत्य है। हमें ये नहीं सोचने ये तो कल्पना है, माइथोलॉजी भी हम ये सब पढ़ते हैं, दिस इज नॉट माइथोलॉजी। सो शुक्राचार्य ने ये याति को श्राप दिया। अब ये याति का शरीर बूढ़े व्यक्ति का हो गया तो बहुत दुखी हुए। उनके 5 बेटे थे ययाति के, उन्होंने पहले अपने 4 बड़े बेटों को कहा बेटे का फर्ज है पिता का आदेश का पालन करना, मैं चाहता हूँ तुम मेरा बूढ़ा देह ले लो और अपने जवान देह मुझे दे दो। 4 बेटों ने कहा हमें कैसे करें, अभी तो हमारी जवानी आ रही है, हम नहीं कर सकते। सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। पुरु जो था 100% पिता की इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा रखता था। पुरु ने कहा सबसे अच्छा बेटा है जो पिता के भावना को हृदय को समझकर उसी का पालन करता है। दूसरे श्रेणी का भक्त है जिसे कहने पर वो करता है, तीसरे श्रेणी का जो पिता का आदेश का पालन करता है। नारद मुनि भागवतम के 14 स्कंद में कहते हैं कि अलग अलग श्रेणी के शिष्य होते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी का शिष्य है जो गुरु के भाव को जानता है और बोले बगैर उसका पालन करता है। जैसे गुरु चाहते हैं ध्यान पे जाप करो पढ़ो, तो बोले बगैर उसका पालन करता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य है जैसे कहा जाए डू दिस, वो कहता है ओके और करता है। और थर्ड ग्रेडर तीसरे श्रेणी का शिष्य है चाहे कुछ भी कहो करेगा अपना मनमानी। तो ये हमारे ऊपर है ये कौन सी श्रेणी का शिष्य बनना चाहते हैं। तो पूर्ण कहा सब बेटों में सबसे उत्तम बेटा ये है जो कि पिता के कहने पर आदेश का पालन करता है। पुरु ने पिता को कहा आपकी इच्छा है कि आप मेरा जवान देह स्वीकार कर लो, मैं तैयार हूं। तो पुरु बन गए बूढ़े व्यक्ति और पिता बन गए जवान। तो क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप दिया था, उसके साथ एक वर भी दिया था। तो महाराज ययाति 1000 वर्षों के लिए बड़े उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी। पूरे विश्व के राजा थे, धन की कोई कमी नहीं थी, इंद्रिय तृप्ति की कोई कमी नहीं थी। तो 1000 सालों के लिए महायाति जुड़े किस कार्य में, इंद्रिय तृप्ति के कार्य में। पर 1000 सालों के पश्चात क्या था उनका अनुभव? महायाति हर प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, जब भी वो संतोष नहीं थे। 1000 सालों के लिए भौतिक समाज में तो 30-40-50 साल तृप्ति प्राप्त हो आप, पर यहाँ 1000 सालों के लिए महायाति को हर प्रकार की भौतिक सुविधा थी, कोई क्लेश नहीं। पूरे विश्व का राजा और इंद्रिय तृप्ति की पूरी सुविधा पूरी। और अंत में महाराज ययाति ने क्या अनुभव किया? हालांकि इतना गहरा प्रयास किया, उनकी इंद्रियां अभी भी अशांत है, इंद्रियां अभी भी कह रही है और इन इंद्रियों को वो तृप्त नहीं कर पाए। तो श्रीमद् भागवतम में इस विषय की चर्चा क्यों की जाती है? आप पूछ सकते हो, ये तो सबसे उत्तम ग्रंथ है पृथ्वी पर, तो इस पर की काम वासना की चर्चा क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक आप इस शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, आप भगवान के शरणागत नहीं हो पाओगे। जैसे भगवान कहते हैं, देवेश गुलाबाय मम माया दुरतया, इस माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप कहोगे भगवान कहते हैं मुश्किल है, तो हमारी क्या संभावना सफलता की? भगवान आगे कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मामे मामे है मामे प्रबोधन माया में दाम तरंती थे। पर अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो इस माया का विरोध कर सकोगे। एक और उदाहरण, रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए, जिसमें एक प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री उपदेश अमृत, जिसमें केवल 11 श्लोक है, पर हर श्लोक का बड़ा प्रभावशाली संदेश है। रूपक गोस्वामी कहते हैं, भगवान के नाम चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। तो आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मीठापन तो कोई छोड़ता नहीं, डायबिटीज हो जाती है जब भी नहीं छोड़ते। तो आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है मीठे हैं। पर रूपा गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है जीव में अविद्या की बीमारी नहीं है? अविद्या के द्वारा क्या अर्थ? अविद्या के द्वारा ये अर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये है अनर्थ। अनर्थ का अर्थ है जिसकी आवश्यकता नहीं, तो ये अनर्थस के कारण हम हरिनाम का मीठापन महसूस नहीं कर सकते, शास्त्रों का मीठापन महसूस नहीं कर सकते, भक्ति की महिमा को हम समझ नहीं सकते। जिस प्रकार आपको कैटरक की बीमारी हो तो ठीक दिखता है आपको, तो अविद्या बुखार हो तो चाहे आपको कितना भी अच्छा प्रसाद दिया हो टेस्ट आता है नहीं। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इस कारण हमें हरिनाम का मीठापन महसूस नहीं होता। कभी आप पूछोगे ये तो ठीक कह रहे हैं रूप गोस्वामी, अविद्या की बीमारी है, हमें हरिनाम का रुचि टेस्ट नहीं आता, पर इसका कोई उपाय भी है क्या, कोई समस्या है, कोई उपाय है, समस्या को हल करने का उपाय है नहीं है, क्या है? रूप गोस्वामी आगे कहते हैं तो अगर हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और हमें नाम का मीठापन महसूस होगा। तो दूसरे शब्दों में समस्या के साथ समस्या को हल कैसे करना वो भी उपाय है। तो महाराज ययाति की कथा में आप देखते हो उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी, आप तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते उनकी तुलना करने के लिए। धन था, पूरे पृथ्वी के राजा थे और भौतिक इंद्रिया तृप्ति की पूरी सुविधा। जब भी उन्होंने क्या कहा, मेरी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो पाए। अगले अध्याय में एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, अगर मक्खन है और आग में रखोगे तो मक्खन पिघलते जाएगा। तो महाराज ययाति कह रहे हैं कि इंद्रियों को आप भौतिक कार्यों के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। तात्पर्य में क्या कहा जा रहा है, हर इंद्रिया प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, हर इंद्रिया हमारी अशुद्ध इंद्रियाँ हैं। अशुद्ध इंद्रियाँ क्यों है, क्योंकि हमारा आकर्षण है भौतिक कार्यों की तरफ। हरिनाम में रुचि नहीं है पर फिर में गानों में रुचि है। आपको जो जियो टेलीफोन की सुविधा मिल रही है, क्या है जियो टेलीफोन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ 1,00,000 फिल्मी गाने, 1,00,000, 1,00,000 से भी ज़्यादा, कई फिल्में, ये सब सुविधा। तो हम एक लाख से अधिक फिल्मी गाने, अनेक फिल्में, हर चीज, क्यों? क्योंकि उसमें हमारी रुचि है इसलिए। पर आप सोचते हो 1,00,000 गाने सुनने से आप संतुष्ट हो जाओगे? आजकल आप हाई स्कूल एग्जाम्स के नतीजा पढ़ो, ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, लोग ये मुफ्त की गाने, मुफ्त की फिल्में, ये सब देखने में लगे हुए हैं। तो रूपक गोस्वामी कहते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी अशुद्ध इंद्रियाँ को शुद्ध बनाना है। सर्वपादी विनिर्मुक्तम तत्पर बिना निर्मलम ऋषिकेण सेवनाम भक्ति उच्चते है। रूपक गोस्वामी कहते हैं कि हमारी इंद्रियाँ अशुद्ध है, अशुद्ध इंद्रियों से आप शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते और हमें इन अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। ये है कृष्ण भक्ति का मार्ग, अशुद्ध इंद्रियों को क्या बनाना। ये जो अनेक नियम दिए जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन संस्था में बहुत से बंधन है, बहुत से नियम है, वही संस्था देखो पूरी छूट है, योग न करो। हाँ, बंधन है, नियम है, किस लिए? आपके अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। ये जो नियम है, मंगल आरती में आओ, 16 माला करो, भगवतम सुनो। भगवतम के विषय में क्या कहा गया है? नास्त्र प्रहेश उपदेश नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भावती। जो व्यक्ति ध्यान से श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, उसके जो अशुद्ध भाव है वो भी दूर हो जाएंगे। आपको कहा जाता है माला का जाप करो, ध्यान से करो, अंदर के वातावरण में करो। क्यों? क्योंकि माला का जाप जितने ध्यान से करोगे उतनी तेजी के साथ क्या प्राप्त होगा? उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव का उपदेश प्राप्त होता है। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, भगवान के अवतार थे। तो उन्होंने कहा, नूनम प्रमथा कुरुते विकर्मा, जो व्यक्ति विकर्म कार्य करता है, जो शास्त्र के विरोध में है, वो मूर्ख व्यक्ति है। प्रमथा, प्रमथा का अर्थ मूर्ख। आप कहोगे हमें मूर्ख क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो कहते हैं आगे, जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़ता है वो ये नहीं देख सकता, आज जो देह है आपके पास वो क्या दे रहा है आपको? केवल कष्ट। आप कह रहे कहोगे कहाँ कष्ट दे रहा है, हम तो सुखी हैं, इधर जवान है, हर प्रकार का सुविधा है। मान लो आप आज सुखी हो, सूरत पत्नी धंधा वगैरह, क्या हमेशा ये रहेगी? वैसे किसी समय भी अंत आ सकता है। और बौद्धिक समाज में क्या है? क्लेश क्लेश। आज जैसे समाज की स्थिति देखो, कष्टों से भरा हुआ है। तो उपाय क्या है? अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध बनाना। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं, हमें अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। इंद्रियों को जब तक हम संतुष्ट करने का प्रयास करके, केवल क्लेश ही प्राप्त होगा। भगवतम में उदाहरण है, जो पतंगा होता है वो अपने आँखों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो रात के समय जब आप बत्ती जलाते हो, पतंगा कहता है ओह, इसकी भी सारा दिन राह देख रहा था, क्योंकि सूर्य तक तो वो पहुँच नहीं सकता। तो पतंगा जाकर बैठता है दीपक के पास और आँख से जल जाता है। तो मधुमक्खी अपने नाक को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो कमल के फूल में जाकर बैठती है, उसे लगता है समाधि में पूरा आनंद आ रहा है। पर शाम को जब फूल बंद होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथी, हाथी को पकड़ना ऐसा नहीं है। तो हाथी तो जो शिकारी है, उन्होंने हाथियों को खास शिक्षा दी हुई है, ट्रेनिंग। तो हाथी हाथी का पीछा करता है और रास्ते में उन्होंने एक खड्डा का खोदा हुआ होता है जिसको घास से भरते हैं। तो हाथी हाथी का पीछा करते हुए खड्डे में गिर जाता है, शिकारी पकड़ लेता है। हिरन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अपने हिरन देखे, पिछले हफ्ते मैं कीनिया में था तो किसी में हम लोग एक जू में गए थे, सारे जानवरों का दर्शन मिला, शेर भी। तो ऐसे हाँ, हिरन हिरन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वॉशिंगटन में हमारे कई भक्त हैं जिनके बैकयार्ड में हिरन खेलते रहते, कि हिरन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हिरन को अगर पकड़ना चाहो तो एक खास धुन बजानी पड़ती है, तो जो शिकारी है खास धुन बजाता है, हिरन रुक जाता है, दौड़ता नहीं है, प्रयास करता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और ये खोज में शिकारी उसे गोली से मार देता। और फिर मछली, मछली को हमेशा भाव रहता है जवान के चस्के का, तो जो मछली पकड़ने जाते हैं वो बेट में वो खास खाना लगाते हैं, मछली जब उसे देखती है कि कहती है आह कुछ और मिल गया खाने को, वो खाने को जाती है और क्या फंस जाती है। तो ये श्रीमद् भागवत के उदाहरण है, हमारे नहीं। श्रीमद् भागवत में ये उदाहरण दिए गए हैं ये साबित करने के लिए कि अगर हम मानव देह प्राप्त करके इंद्रियों के दास बन जाएं, जैसे अनेक पशु बनते हैं, हमारा भी उसी प्रकार का क्या होगा, परिणाम होगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो महाराज ययाति की कथा का मूल संदेश ये है, हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर महाराज ययाति हजार साल तक जुड़े थे इन कार्यों में, उनकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई तो हमारी क्या संतोष होगी। हाँ 20, 30, 40, 50, 60 साल इंद्रियां तृप्ति कर लोगे, तो 60 साल के बाद क्या कहोगे, हम तो लास्टी बकरे जैसे थे। प्रभुपाद जी कहते थे जो बकरा है मिनटों में उनके कतल खाने में नंबर आने वाला है, पर वो उसको मौका मिले इंद्रिया तृप्ति का तो उसका फायदा उठा लेगा, ये नहीं सोचेगा एक मिनट में मैं कतल होने वाला हूँ। तो उसी प्रकार आज हम अज्ञानता में हैं, अंधेरे पद में हैं, और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवतम को पढ़ें सुने ध्यान से। अब एक बार भगवतम को ध्यान से पढ़ोगे सुनोगे तो जो काम वासना की इच्छा है उससे आप बच पाओगे। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे अशुद्ध इंद्रियों का हमें शुद्ध बनाना। तो जब आप हरि नाम करते हो, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो, इनके द्वारा यही लक्ष्य प्राप्त होता है। ये अनुभव है सारे विश्व में कि जो भक्त ध्यान पूर्वक साधना रखते हैं और इन चीज़ों नियमों का पालन करते हैं, वो बड़ी सरलता के साथ काम वासना के भाव से बच सकते हैं। ये कई बार भक्त आते हैं कहते हैं ओ काम वासना का इतना गहरा प्रभाव है हम बच नहीं सकेंगे। अब बच सकोगे अगर आप बचाना चाहो तो। रूप गोस्वामी में क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य सत्कर्म प्रवर्तना, आप दृढ़ होकर हमें ये सेवा करना है। तो महाराज ययाति हजार साल के लिए हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई, अंत में अशांत है। तो ये सोचना कि हम 10, 20, 30 साल में इंद्रियों को संतुष्ट कर लेंगे फिर वापस आ जाएंगे संन्यास लेने के लिए, ये गलत है। आप कभी भी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, पर अगर आप इंद्रियों का उपयोग करो भगवान के सेवा में, फिर आप हर दृष्टि से इंद्रियों को संतुष्ट कर पाओगे। और इस विषय में कई उदाहरण है हमारे शास्त्र में। उदाहरण के लिए अमरीश महाराज राजा थे, हर प्रकार की सुविधा थी, पर उन्होंने इंद्रियों को शुद्ध रूप से उपयोग किया। क्या किया, नेत्रों द्वारा भगवान का दर्शन और कानों द्वारा श्रवणम कीर्तनम, जीभ द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण और प्रसाद, पैरों द्वारा भगवान के मंदिर में चल के जाना, हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर को साफ करना। ये नहीं कि कई बार हम भक्ति में जुड़ते हैं और कहते हैं हम सेवा करेंगे तो हमें साहब की सेवा चाहिए, गुरु हुक्म चला देंगे सेवा। नहीं, अमरीश महाराज जमीन को साफ कर देते हैं और हाथों द्वारा मंदिर को साफ करना। उन्होंने हमें ये बताया किस प्रकार अगर हम इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो ये इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी। हमारे समक्ष कई महात्माओं का उदाहरण है, केवल ये आवश्यक है कि हम इसका लाभ उठाओ और साधु संघ में ज़्यादा सरल हो जाता है। तो संक्षेप में आज के श्लोक के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है शुक्रदेव गोस्वामी के द्वारा कि महाराज यति 1000 वर्षों तक राजा थे, 1000 वर्षों तक पूरी सुविधा थी, हर प्रकार के सुख का काम वासना में जुड़े हुए थे, अंत में निराश थे, बेचैन थे और अशांत है। आप सातवें स्कंद में पढ़ते हो हिरण्यकशिपु हर प्रकार की सुविधा थी, सारे देवता भी उनसे डरते थे। अभी थोड़े दिनों में निर्जल एकादशी आ रही है, आप में कितने भक्त निर्जल एकादशी रखोगे? अच्छा, इतने ओके, तो आप तो एक दिन के लिए रखोगे, पर हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 100 वर्षों के लिए अंगूठे में खड़े के हाथों को उठाकर पूरा निर्जल एकादशी रखे देवताओं के 100 वर्षों के। तो जब भी वो अशांत थे क्योंकि उनका भाव क्या था, बहुत एक शोक। तो हमें इन इंद्रियों को शुद्ध बनाना है, तो ये जो नियम है, जो उस जाप है, शास्त्रों का अध्ययन है, इस सारे कार्यों का एक ही लक्ष्य है, आपके अशुद्ध इंद्रियों को क्या बनाना। तो ये संभव है अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करो, शास्त्र पढ़ो और विनम्रता का भाव। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सिनाद भी चेरा तरोर भी हमारी न माना कितने। अगर आप हरि का नाम सदा लेना चाहते हो तो ये विनम्रता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी ने हमें हर प्रकार की सुविधा दी है माया का विरोध करने के लिए, हमें केवल इसका लाभ उठाना है। तो ये जो अनेक नियम हैं इन सब का एक ही लक्ष्य है, आपके अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध बनाना। और अगर आप इनका लाभ उठाओगे तो बिना शंका के भगवान के धाम लौट सकोगे। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि वद। अगर तो मेरी शरण में आओगे तन मन धन से मेरी सेवा करोगे तो बिना शंका के कहाँ जाओगे? हम इतने मूर्ख हैं, हम कहते हैं क्या पता सच है या झूठ है। जब अमेजन कंपनी कहती है वहाँ माल वापस करोगे तो हम ले लेंगे, तो पूरा विश्वास रहता है। और जब भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, हम चकते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, हमें साधु संग में रहकर भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते थे आप एक कदम उठाओगे भगवान के शरणागत होने के लिए, भगवान 9 कदम उठाएंगे। इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको, किधर 100 रुपये की कीमत है, आपको केवल 2 रुपये देना। आप एक कदम उठाओ भगवान 10 कदम उठाएंगे आपको आध्यात्मिक जीवन में सफल बनाने के लिए। तो हमें दृढ़ होकर भगवतम के संदेश का लाभ उठाना चाहिए और इन कार्यों के द्वारा अशुद्ध हृदय शुद्ध बन जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है फिर मुझे जाना है। हाँ, यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। ओके।
हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई तृतीय श्रेणी का, तीसरे श्रेणी का कोई अगर शिष्य है तो द्वितीय श्रेणी में कैसे, कौन से प्रयास से आ सकता है?
प्रयास दूसरी से, आप तीसरी श्रेणी में हो, आप दूसरी में जाना चाहते हो,
हाँ,
तो प्रयास करने पर जा सकते हो। जो आदेश मिलता है गुरु द्वारा उसका पालन करो। पहले श्रेणी का शिष्य है जो बोले बगैर जानता है क्या है आदेश, उसका पालन करता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य है, उसे बोलो ऐसे करे, वैसे करता है। तीसरे श्रेणी का, चाहे आप कुछ ही बोलो, करेगा अपना मनमानी। तो आप आदेश का पालन करना शुरू कर दो, बस, वेरी इजी। ओके, ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध में है। ओके, क्विक क्विक क्विक,
हरे कृष्णा महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आपने बोला ये इंद्रियां हमारी शुद्ध होंगी साधना भक्ति का पालन करने से, तो जैसे कि किसी की इंद्रियां बहुत ज़्यादा अशुद्ध हैं तो क्या ज़्यादा उसको साधना करनी चाहिए? मेरा ऐसा प्रश्न है कि ज़्यादा साधना करेंगे तो जल्दी शुद्ध होंगी।
अगर आप माला का जाप ज़्यादा करना चाहो तो इसमें कोई इतराज नहीं है। मानव को मैं 32 माला करना चाहता हूँ, करो, पर सेवा भी करो साथ में। ये नहीं कि हम सारा दिन माला करें या माला करने का बहाना लें और सेवा नहीं करें। दोनों चीज़ें करो। पापा जी कहते थे सुधारने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है, दवाई और परहेज। हमारी दवाई है चैंटिंग, परहेज है सेवा, दोनों की आवश्यकता है।
थैंक यू महाराज। महाराज, यू हैव मेंशनड दैट वी हैव दिस डिजीज ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लॉट ऑफ अनर्थास, एंगर, लस्ट। समटाइम महाराज, व्हेन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सर्विसेज एंड अंडर अस सम डिवोटीज आर डूइंग सम सर्विस, सो इफ दे कमिट मिस्टेक we tend to correct them. So how we come to know that this is due to sense of responsibility which I have, I am correcting, or it is due to my anger, I am tend to correct them?
If you want to correct somebody junior, do it sweetly, not harshly. In the Bhagavad Gita, Krishna talks about austerity of the tongue. Krishna says, one austerity of the tongue is, speak words that are truthful. Then he says, speak words sweetly. Bhagwan kehte hain, jeev ki ek tapasya hai, mithas ke saath bolna. Inka prashan ye tha, ki agar hum adhikari hain, aur kisi ki kamzoriyon ko hum sudhana chahe, so, humko kaise pata, ye guno ke bhaav hai. So, अगर सुधारना भी है प्रेम से सुधारो, पर कड़वे तरीके से सुधारोगे तो सबको दुश्मन बनाओगे, मीठे तरीके से सुधारोगे तो सब मित्र बनेंगे और सुधर भी जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हम सुधार दें तो हमें हक है चलाने का, बेइज्जती करने का, कोई हक नहीं है। शास्त्र में लिखा है जबीन जबान में मिठास होना चाहिए। हाँ, मोर क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज, अरे आपने बताया कि जब हम एक कदम लेते हैं भगवान की तरफ तो भगवान 10 कदम लेते हैं, पर हमें ये फील
नौ कदम 10 नहीं, पहला कदम आपको उठाना पड़ता है।
हमें ये फील क्यों नहीं हो पाता है कि भगवान भी हमारी तरफ, हमें ये फील क्यों नहीं हो पाता है भाई भगवान भी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं उस चीज को?
दूसरे शब्द में जब आप प्रयास करते हैं भगवान के शरणागत होने के लिए, तो भगवान आपको सुविधा देते हैं। जैसे कि आपके विषय में भगवान आपको इस्कॉन संस्था से जोड़ दिया, भगवान ने आपको भक्तों के साथ जोड़ दिया, भगवान ने आपको प्रभुपाद के ग्रंथों के साथ जोड़ दिया। ये कोई छोटी भेंट है, ये तो बहुत बड़ी भेंट है। अब इनका लाभ उठाओ। आपको सारे हथियार दे दिए जो आपको चलना है। आपको अमेरिका से कोई हथियार नहीं खरीदना पड़ेगा, सारे हथियार दे दिए माया का विरोध करने के लिए। अब केवल आपको उनका उपयोग करना है दृढ़ होकर। हनुमान।
हरे कृष्ण महाराज, तो इस कथानक से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि जो शर्मिष्ठा, जो वृषप्रभा जो दैत्य की बेटी थी, जो कि दैत्य के राजा थे, उन्होंने अपने पिता के हित के लिए देवानी का दासी बनना स्वीकार किया और इंद्रिय का संयम करते हुए सेवा की। तो इसके बाद में उसका लाभ हुआ, उसको दो बच्चे भी हुए और वो उसका ही बेटा था पुरु, जो कि ययाति को अपने जवानी दिया और उसकी सेवा किया। तो पुत्र वह है जो पिता के हित के लिए इंद्रिय का संयम करता है और इंद्रिय भोग का त्याग कर सकता है। हरे कृष्ण। कमेंट।
माइक माइक।
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। महाराज, माय क्वेश्चन इज दैट द होल क्लास इज बेस्ड ऑन टू रीडिंग द स्क्रिप्चर, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। सो हाउ वी कैन बी मोर ईगर टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स?
गुड क्वेश्चन। The scriptures gave us clear direction how to succeed spiritually. Therefore, we encourage everyone to end the morning class, evening class. We should just make, and those of you who live in a hostel or at home, they can read these books. If you are educated, Prabhupada said, these books are not just for distribution, they also have to be studied. So we should study these books regularly. And study means read them seriously. Not that I'm about to fall asleep and I start reading the Bhagavatam and I use the Bhagavatam as a sleeping pill. So don't use the Bhagavatam as a sleeping pill. Study it when you are fully alert and attentive. And when you are attending the Bhagavatam class, you are fully attentive. Not that this Bhagavatam class extension of sleeping. Okay, any more? Yes, quickly.
So much. Maharaj, jab kaam hriday mein jalta hai, तो जो भी भगवत संदेश और जो भी जप किए हैं वो सब भूल जाते हैं, तो उस समय हम कैसे जो है भगवंत का संदेश याद रखें और सही रहें?
ये काम वासना के आग हर एक के हृदय में है, ये मत सोचो मेरे हृदय में ही है। ये समस्या सबकी है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, और गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। तो भगवान ने जो उपाय दिया है ये भी सबके लिए है। ये नहीं कि आपको अलग उपाय, उसको अलग उपाय, उसको अलग उपाय। तो सबके हृदय में ये जल रही है और सबके लिए एक ही समस्या हल है। तो आपका प्रश्न क्या है? कैसे? वही जो आपको उपदेश दिया जा रहा है, जो उपदेश आप रोज सुनते हो उसका पालन करके। You can protect yourself by following the process given by the acharyas. The process that is being presented is a process given by the great acharyas and Prabhupada. Prabhupada didn't give us anything of his own. He just repeated what the acharyas have given. Agar hum niyamon ka palan karenge, bina shanka ke 100% aap bhagwan ke sharanagat ho sakoge. Aur kai hazaron bhakt hain isko unge jo is maya ke prabhav mein rehte hue bhi seva kar rahe hain. Okay.
Hare Krishna Maharaj.
Yes.
अभी बताएं कि भ्रम में नहीं रहना चाहिए लोगों को, तो हम कैसे समझें कि ये सफल हो गया है? सफल व्यक्ति कौन है?
सफल व्यक्ति वो है जो अच्छी साधना रखता है, जप करता है मंदिर में, शाम क्लास में आता है और दिन में सेवा करता है. सिंपल. हम आपको ये नहीं कहते लाख रुपए दिन का लेके आओ तो ही सफल माने जाओगे, या भाई नाम में रुचि बढ़ा रहे हो आप सफल हो.
हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे आपने बताया कि अगर किसी को सुधार करना है तो हमें नम्रता से सुधार कर सकते हैं, स्वीट वर्ड्स में बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बार बार बोलने पर अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता है तो थोड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ता है, तो अगर स्ट्रांगली बोल दिया जाए तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान लेता है. तो इस सिचुएशन में जिसे स्ट्रांगली बोला गया है उसने क्या समझना चाहिए कि मुझे क्यों बोला गया है, और जो स्ट्रांगली बोल रहा है उसने क्या समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ?
कई बार हम स्ट्रांगली बोलते हैं अहंकार के कारण. अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आध्यात्मिक जीवन में. हम अपने एक शत्रु बन जाते हैं. तो अगर आप प्रेम से बोलोगे तो अच्छी संभावना है लोग सुनेंगे. प्रभुपाद भी बड़े प्रेम से भक्तों को सुधारते थे. वाणी में मिठास होना चाहिए, वाणी में तलवार नहीं होनी चाहिए. तलवार रखोगे वाणी में कोई आपके पास नहीं आएगा. और कोई?
हाँ, हाउ टू डेवलप दैट इंटेंस डिजायर टू फॉलो एंड अप्लाई.
एवरीथिंग इज फीजिबल बाय मेकिंग एन एफर्ट. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. यू हर्ड दैट बिफोर? इंग्लिश में एक फ्रेज है, भगवान उनका सहयोग देते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं. So make an effort and Krishna will help you. The sadhus will help you. In ISKCON you have so much association and all the brahmacharis are ready to help you. But you should be willing to take help. If you think, no, I know everything, don't tell me anything, I know, this man is just envious of me, then you will never progress. Humility means I'm ready to be corrected, I'm ready to be guided, I'm ready to be directed. That is humility. Humility doesn't mean just fold hands and speak softly. You must understand, I am fool number one. Lord Chaitanya was asked, you're such a prominent scholar, why don't you study the Vedanta? What did he say? My spiritual master thought, I'm a fool. He said, all you're capable of doing, chant Hare Krishna. So, okay. Any more questions? Yes.
Sir? Maharaji, abhi hum sadhana karte hain, to Krishna ke means करीब जा रहे हैं, बट उसी में हमारी जो पास्ट हैबिट्स है तो वो वापस से पीछे खींच रही है, तो उनको कैसे?
पास्ट हैबिट्स सबकी बुरी आदतें हैं. थोड़े रोको, भगवान ने आपको शक्ति दी है, हथियार दिए हैं, उनको रोको। मान लो 2 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आप ऐसे चलते हो कि फिर एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, आप सावधान रहते हो कि एक्सीडेंट नहीं हो। अभी आप बुद्धि लगाओ कि आप उनसे बच सको। भगवान कहते हैं स्पष्ट, कैसे बच सकते हो? You don't need to do any research. All the answers are already there. Okay? Any more? Okay. Thank you very much. Hare Krishna.